ಸಂಹಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೇಷಧಾರಿಣೆ ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾಮಹಾಜ್ಞಾನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮನೇ ಗೌರಕೃಷೇ ನಮಃ. ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪ ಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ. ಆರಾಧ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವ್ರಜೇಶತನಯ ತದ್ಧಾಮ ವೃಂದಾವನಂ ರಮ್ಯ ಕಾಚಿದುಪಾಸನಾ ವ್ರಜವಧೂ ವರ್ಗೇಣಯಾ ಕಲ್ಪಿತಾ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ಪ್ರಮಾಣಮಮಲಂ ಪ್ರೇಮಾಪುಮರ್ಥೋ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭೋರ್ಮತಮಿದಂ ತತ್ರಾದರಹನಾ ಪರಃ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವಾನೋಸ್ತುತೆ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. कल बाल कांड की चर्चा प्रारंभ हुई. इसमें हम ये बतला रहे थे कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करने के बाद लव और कुश को कंठस्थ कराने के लिए आदेश दिया. बड़े प्रसन्नता से लव और कुश ने रामायण की कथा को कंठस्थ करके अनेक प्रांतों में घूम फिर कर रामायण का पाठ करना शुरू किया. स्वयं श्री रामचंद्र ने इस कथा को सुनी अपने दरबार में और लव कुश अयोध्या की महिमा का गान करते करते आगे बढ़ते गए. बात यहां तक पहुंची कि दशरथ महाराज सब कुछ होते हुए भी दुखी थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। उनके बाद में राज्य का भार संभालने के लिए कोई था नहीं, तो सुमंत्र ने उनको बहुत प्राचीन कथा बताई जो कि उन्होंने सनत कुमार से सुना था। इस भविष्यवाणी के अनुसार ऋषि श्रृंग ऋषि जब यहां चले आते कौशल राज में और वो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करते, तो फिर उनको पुत्र की प्राप्ति होती। तो ठीक ऐसे ही हुआ, दशरथ महाराज लेकर आए ऋषि श्रृंग ऋषि को और अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न हुआ। उसके बाद में ऋषि श्रृंग ऋषि के निवेदन पर पुत्रेष्टि यज्ञ भी संपन्न हुआ। उधर देवलोक में देवतागण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए एक शिकायत लेकर कि यहां पर पृथ्वी लोक में रावण ने बहुत उत्पात मचा दिया है, सबके नाक पर दम बन गया है, और ये सब इसलिए संभव हुआ कि उसे आपने वरदान दिए। आपके वरदान के बल पे अब रावण इतना घमंडी हो चुका है कि सब जगह उपद्रव मचा रहा है। तो ब्रह्मा जी फिर सोचने लगे और उन्होंने कहा कि जब मैंने वरदान मांगी, मैंने वरदान दी थी रावण को, तो अपने घमंड के कारण रावण ने अपनी मृत्यु की रक्षा हेतु बहुत कुछ चाहा था कि मुझे देवताओं के द्वारा या यक्ष राक्षस पिशाच आदियों के द्वारा कोई हानि नहीं पहुंचे, परंतु उसने घमंड के कारण यह सोचा था कि ये मनुष्य हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, इसलिए मनुष्यों से रक्षा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखी रावण ने, तो ऐसा वरदान चाहा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि बस यही एक उपाय है। ठीक उस समय स्वयं भगवान विष्णु देवताओं के सामने प्रकट हुए। देवताओं ने विष्णु के चरण कमलों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपकी समस्या को समझता हूं, चिंता नहीं करना, शीघ्र ही मैं महाराज दशरथ के घर में जन्म लूंगा और जैसा कि आपने निवेदन किया है, मैं अपने आप को चार व्यक्तियों में बांट दूंगा और इस तरह से मैं प्रकट होकर आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। रावण का वध निश्चित है। देवतागण बड़े प्रसन्न हुए। विष्णु वहां से अदृश्य हो गए, अपने धाम चले गए और थोड़ी देर बाद जब पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त हो रहा था तो अग्नि में से एक विष्णु दूत उत्पन्न हुए। सांवले रंग के थे, दिखने में बहुत सुंदर थे, दिव्य सुंदर शरीर था उनका, उनके कर कमलों में एक कुंभ था जिसमें पायस था। उन्होंने ये पायस राजा दशरथ को दिया और कहा कि ये अपने रानियों को आप खिलाइए और आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। राजा दशरथ ने ऐसे ही किया। काफी सोच के बाद उन्होंने आधा जो हिस्सा था पायस का वो अपने वरिष्ठ रानी कौशल्या को उन्होंने दिया। जो बचा हुआ था उसका आधा भाग उन्होंने सुमित्रा को दिया जो उनकी दूसरी रानी थी। फिर बचे हुए भाग का आधा भाग उन्होंने कैकेई को दिया और फिर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो पुनः सोच के सुमित्रा देवी को प्रदान किया। इस तरह से कौशल्या देवी को पायस का आधा भाग मिला, सुमित्रा देवी को पहले तो एक चौथाई भाग मिला और फिर आठ भागों में से एक भाग अंत में मिला और कैके देवी को एक आठवां भाग मिल गया। तो ऐसे काफी समय बीत गया। उधर ब्रह्मा जी ने देवताओं को फिर से बुलाया और कहा कि भगवान अब शीघ्र ही प्रकट होने वाले हैं पृथ्वी पर, तो आपके लिए मेरा आदेश ये है कि किन्नर, यक्ष, वानर, राक्ष इत्यादि इन समस्त योनियों में जो महिलाएं हैं उनके गर्भ में आपके संतान की उत्पत्ति आप करो, ये आपके अंश होने चाहिए और इनके ऐसे गुण होने चाहिए कि वो आप ही के समान शक्तिशाली, बुद्धिमान, तेजस्वी, प्रकाशमान होने चाहिए, कामरूपी होने चाहिए, अपने इच्छा के अनुसार उनको अपनी रूप बदलने की शक्ति होनी चाहिए, समस्त प्रकार के योग सिद्धियां उनके पास होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र में विस्तार प्रवीण होने चाहिए। तो उनके इच्छा का या आदेश का पालन करके जो प्रमुख देवतागण थे वो सब यहां पे प्रकट होने लगे। इंद्रदेव जो है वो वाली के रूप में प्रकट हुए, अर्थात वाली उनके पुत्र थे। सूर्य सुग्रीव बने, बृहस्पति तर बने, कुबेर गंधमादन बने, विश्वकर्म नल बने, अग्नि नील बने, अश्विनी कुमार महेंद्र और द्विविद बने। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। वरुण देव सुषेण बने और वायु देव हनुमान जी बने। तो ये कोई, ये सारे वानर आदि जो हैं, ये कोई साधारण वानर नहीं है, स्वयं देवताओं की शक्ति उनमें थी। यहां जब कोई बच्चा जन्म लेता है मनुष्य समाज में तो उसे अनेक महीनों तक मां के गर्भ में रहना पड़ता है, परंतु देवलोक में जब कोई देवता जन्म लेते हैं तो जन्म तुरंत हो जाता है। तो उसी प्रकार से इन मानवों का जन्म तुरंत हो गया और पहाड़ों की तरह उनका शरीर कठोर था, विशाल था और ऐसे 1 करोड़ वानर भालू आदि पैदा हुए श्री रामचंद्र की सहायता करने के लिए। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि 3 प्रकार के सहायक ऐसे थे श्री रामचंद्र के जिनका जन्म देवताओं द्वारा हुआ। पहले थे जांबवान आदि भालू, ये भी कोई साधारण भालू नहीं थे, और 2 प्रकार के वानर थे, एक साधारण वानर और दूसरे वो वानर जिनकी पूंछ जो है गाय के समान लंबी थी। तो ऐसे 1 करोड़ वानर भालू आदि जब प्रकट हुए पृथ्वी लोक पे, सब जगह फैल गए और जंगलों में निवास करके काफी उनका असर, उनका प्रभाव सब जगह दिखाई पड़ रहा था। ऐसे समय बीत गया। उधर कौशल्या देवी, सुमित्रा देवी और कैकेयी देवी के गर्भ में भगवान के अंश प्रकट हो चुके थे। पूरे 12 महीने बीत गए। तीनों रानियों को पता चला कि हमारे गर्भ में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि पर दोपहर के 12 समय कौशल्या देवी ने श्री रामचंद्र को जन्म दिया। जैसे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमेत्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति तत्वतः इस बात को जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो जब हम कहते हैं कि श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, हमें जानना चाहिए कि उनका जन्म हमारे जन्म के समान नहीं होता है। श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस प्रकार से सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, परंतु वास्तव में सूर्य का न तो उदय होता है न सूर्य अस्त होता है। सूर्य तो अपने स्थान में स्थित है, अपनी कक्षा में, अपने संवत्सर में स्थित है। पृथ्वी में हमारे भौगोलिक स्थान के अनुसार, हमारे दृष्टिकोण के अनुसार हमें ये लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्य उदित हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। परंतु वास्तव में सूर्योदय न तो उदित होता है न अस्त होता है। तो सूर्य का जन्म और सूर्य की मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से भगवान का जन्म वास्तव में जन्म नहीं है, वो एक प्राकट्य मात्र है। जैसे सूरज किसी एक स्थान में प्रकट होता है जिसे सूर्योदय कहते हैं, उसी प्रकार से भगवान जब किसी स्थान में प्रकट होते हैं तो वो उनका आविर्भाव कहलाता है। भगवान थोड़ी देर समय के लिए प्रकट होते हैं, अपनी लीला प्रदर्शित करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं। उनके अप्राकट्य को तिरुभाव कहते हैं। तो श्री रामचंद्र का आविर्भाव हुआ और थोड़े ही समय बाद कैकेयी देवी के गर्भ से एक और पुत्र का जन्म हुआ। वैसे वाल्मीकि जी बताते हैं कि कौशल्या देवी के पुत्र के अंदर भगवान विष्णु का आधा भाग था, आधी शक्ति थी, और फिर कैकेयी देवी के पुत्र भरत में एक चौथाई भाग की शक्ति थी भगवान विष्णु की। और उसके बाद सुमित्रा देवी ने दो दिन बाद जुड़े बच्चों को जन्म दिया, वो भी विष्णु के अंश थे, एक छठा भाग शक्ति उनके अंदर थी। तो हमें याद रखना है कि सुमित्रा देवी के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वो श्री रामचंद्र से केवल दो दिन छोटे थे। परंतु ऐसे बताया जाता है या ऐसे एक प्रथा होती है वैदिक सभ्यता में कि जो बड़े भाई होते हैं वो पिता तुल्य होते हैं, इसलिए उनकी सेवा उसी तरह करनी चाहिए जैसे एक पुत्र अपने पिता की करता है। इसलिए लक्ष्मण श्री राम की इसी तरह सेवा करते थे। परंतु चारों भाइयों के बीच में अंतर बहुत कम था, और भरत तो बहुत कम समय से छोटे थे श्री राम के। तो चारों भाइयों का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ, सारे अयोध्या नगरी में, सारे कौशल प्रांत में, बल्कि सारे पृथ्वी में खुशियां मनाई गई। सब जगह पुण्य और ऐसे शुभ लक्षणों का दर्शन दिखाई पड़ रहा था। दशरथ महाराज और उनके रानियां बहुत प्रसन्न चित्त के हुए, और ये बच्चे धीरे धीरे से बढ़ने लगे। वशिष्ठ मुनि जो कि दशरथ महाराज के कुल गुरु थे, उन्होंने जितने भी संस्कार थे वो सारे संपन्न किए, जात कर्म से लेकर धीरे नामकरण आदि। नामकरण संस्कार के समय उन्होंने बच्चों के नाम रखे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ऐसे आगे वशिष्ठ मुनि के द्वारा उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त कर ली। शीघ्र ही वो बड़े हो गए, बहुत लोकप्रिय हुए, परंतु सबसे अधिक लोकप्रिय थे श्री राम, क्योंकि श्री राम के गुण ही कुछ ऐसे थे, लक्षण ही कुछ ऐसे थे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि उनको नहीं चाहता था, जो कि उनसे प्रेम नहीं करता था। और ऐसे कई वर्ष बीत गए, राजा दशरथ को पता ही नहीं चला कि कैसे समय बीत रहा था। अनेक वर्ष बीत गए, राजा दशरथ आनंद के समुद्र में तैर रहे थे, और जैसे जैसे तरुण अवस्था में पहुंचे, चारों पुत्र दशरथ महाराज के वेद शास्त्रों के ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, धनुर्विद्या प्राप्त कर ली, बहुत सज्जन थे व्यवहार से। और जब श्री रामचंद्र 15 या 16 वर्ष के थे, उस समय दशरथ महाराज के दरबार में विश्वामित्र मुनि पधारे। विश्वामित्र मुनि का नाम तो अवश्य आप सबने सुना होगा, बहुत तपस्वी ऋषि थे, ब्रह्मर्षि थे, और इनके इतिहास का वर्णन आगे चल के थोड़ी देर में हम करेंगे। तो विश्वामित्र मुनि का स्वागत दशरथ महाराज ने जैसा उचित है, जैसा उपयुक्त है, वैसे किया, अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर बिठाया। ये प्रथा हुआ करती थी साधुओं के स्वागत के लिए, भले वो पृथ्वी का राजा भी क्यों ना हो, विश्व सम्राट भी क्यों ना हो, यदि कोई ऋषि, कोई साधु, कोई साधारण ब्राह्मण भी प्रवेश करता उसके दरबार में, उनका स्वागत करके, उनकी स्तुति करके स्वयं राजा उनको अपने सिंहासन पर बिठाते। श्री कृष्ण ने सुदामा की सेवा इसी तरह की। सुदामा तो एक केवल गरीब ब्राह्मण थे, कपड़े प्राय उनके शरीर के ऊपर नहीं थे, और जो थोड़े बहुत कपड़े थे भी वो फटे हुए थे, बहुत दुबले पतले थे, क्योंकि कुछ आहार ही नहीं था। सारे सैनिकों ने, चौकीदारों ने सोचा कि ये ऐसे कौन है व्यक्ति जो हमारे द्वारकाधीश का दर्शन करने आए हैं। परंतु एक प्रथा थी, सभ्यता थी कि ब्राह्मण को रोका नहीं जा सकता, ब्राह्मण कहीं भी प्रवेश कर सकते थे, राजा के दरबार में जाके राजा को डांट भी सकते थे। तो स्वयं श्री कृष्ण जब देखा दूर से कि सुदामा आ रहे हैं, तो दौड़ते हुए गए, उनका स्वागत किया, अपनी शैया पर बिठाया, उनके चरण कमलों की सेवा की, उनकी आरती उतारी। तो ये वैदिक सभ्यता है। दशरथ महाराज ने ऐसे ही किया विश्वामित्र मुनि के साथ, और फिर उनसे प्रश्न पूछने लगे कि हे मुनिवर, क्या जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के मार्ग में आप अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं? क्या आपकी तपस्या आदि ठीक ठाक चल रही है? क्योंकि हम जब प्रश्न करते हैं किसी को ऐसे विषय में, हम उनसे पूछताछ करते हैं जिसमें हम जानते हैं कि वो व्यक्ति रुचि रखता है। हम किसी भौतिकता वाले व्यक्ति के पास जाके कहें आपकी भक्ति कैसे चल रही है तो क्या लाभ है, या किसी भक्त के पास जाके पूछें कि आपका भोग कैसे चल रहा है, ये भी ठीक नहीं है। तो विश्वामित्र मुनि के पास जाकर उन्होंने यही प्रश्न किए। विश्वामित्र मुनि बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ महाराज ने उनसे कहा था कि जो आपकी इच्छा है बताइए, सारा राज आपके हवाले हम करने के लिए तैयार हैं, आपके जो भी आदेश हैं बताइए, हम पूर्ण अवश्य करेंगे। फिर विश्वामित्र मुनि ने बात करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हे राजन, वैसे मैं मेरे आश्रम से आया हूं जिसका नाम है सिद्धाश्रम। मेरे विद्यार्थियों के साथ, अन्य ऋषियों के साथ मैं वहां यज्ञ करता हूं, लेकिन वहां पे ये दो राक्षस आते हैं, बहुत उपद्रव मचाते हैं, तहस नहस कर डालते हैं सारे यज्ञ स्थली का। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आपके पुत्र श्री राम को मेरे हवाले कर दो। केवल 10 दिनों के लिए मैं श्री राम को ले जाना चाहता हूं, और जैसे ही श्री राम वहां आएंगे राक्षसों का वध वो आसानी से करेंगे, और मैं आश्वासन दिलाता हूं आपको कि 10 दिनों के अंदर वो आपको आपके पास लौट के आएगा और मैं आपको अनेक वरदान प्रदान करूंगा। जैसे ही दशरथ महाराज ने सुना कि वो श्री राम को चाहते हैं और श्री राम से उनको अलग होना होगा, तो दशरथ महाराज को ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो कोई वज्र उनके सर पे लग गया हो। वो नीचे गिर पड़े, बेहोश हो गए। फिर से जब होश आया उनका, फिर से जब उनको स्मरण हुआ कि अरे ये उनसे श्री राम को मांग रहे हैं, पुनः बेहोश होकर गिर पड़े। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि महाराज दशरथ के हृदय में श्री राम के प्रति कितना स्नेह था। अपने चारों पुत्रों से वो प्रेम करते थे, परंतु श्री राम सबसे अधिक प्रिय थे उनके लिए। श्री राम के गुण ही कुछ ऐसे थे, न केवल दशरथ महाराज, न केवल उनके जितने भी रानियां थीं, वो सारे मंत्री ब्राह्मण समस्त प्रजा श्री राम से उतना ही प्रेम करते थे। तो दशरथ महाराज को यह सहन नहीं हुआ, फिर बड़ी कठिनाई से उठे। जब दोबारा उनका होश आया और विश्वामित्र मुनि से कहने लगे, ये आपने क्या मांग लिया? राम तो अब बालक मात्र है, आज तक किसी युद्ध में उसने लड़ाई की नहीं है, अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, 15 साल का है, आप उसे ले जाएंगे, परिपक्व नहीं है इतना युद्ध में, तो कुछ भी हो सकता है, मैं तो जी नहीं सकता, मैं स्वयं आपके साथ आऊंगा, मेरी सेना को लेकर आऊंगा और आपकी और आपके यज्ञ स्थली की रक्षा में अवश्य करूंगा, आप बिल्कुल संकोच न करें, मुझे केवल आदेश दें आप। परंतु ये तो बताइए कि इन दो राक्षसों का नाम क्या है और उनकी शक्ति कितनी है और वो क्या करते हैं? फिर विश्वामित्र मुनि ने बताया कि इनका नाम है सुबाहु और मारीच। ये वैसे रावण के साथी हैं और ये आके हमारी यज्ञ स्थली को प्रदूषित कर देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने रावण का नाम सुना तो विश्वामित्र मुनि कहने लगे, रावण? रावण का सामना तो कोई नहीं कर सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। और इसके दो साथी सुबाहु और मारीच, वो तो उतने ही शक्तिशाली हैं जितने रावण हैं। आप तो कह रहे थे कि ये दोनों आपकी यज्ञ स्थली में आके उत्पात कर रहे हैं, लेकिन उनका सामना तो कोई नहीं कर सकता। वैसे रावण सब जगह जाके सबको कष्ट देता है, और जब रावण कहीं नहीं जा सकता तो इन दोनों को भेज देता है, तो ये तो संभव नहीं है। हे मुनिवर, मैं राम को अवश्य नहीं भेजूंगा। तब विश्वामित्र मुनि के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, आग बबूले हो गए क्रोध के कारण, और क्रोधवश होकर कठोर वचन बोलने लगे दशरथ महाराज के प्रति कि हे राजन, इक्ष्वाकु राजा के वंश में आने वाले राजाओं के लिए ऐसे आप वचन कहना शोभा नहीं देता, आज तक ऐसे आपके वंश में कभी भी हुआ नहीं है कि कोई ब्राह्मण आए आपके, कोई ऋषि आपके दरबार में आए और राजा ने कोई वचन दिया हो कि मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा और फिर उसने अपने वचन नहीं निभाए। तो विश्वामित्र मुनि को क्रोध इतना हुआ कि सारी पृथ्वी हिलने लगी, देवतागण भी हिल गए, घबरा गए कि अब क्या हुआ। उस समय वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ के पास आए और कहने लगे कि हे राजन, आप धर्मपरायण राजा हैं, सत्य वचनी हैं आप, तो आपको शोभा नहीं देता है कि आप झूठ कहें, आपने वचन दिया है विश्वामित्र मुनि को कि आप जो भी मांगोगे मैं पूर्ण करूंगा, तो इस समय यदि आप पीछे हट जाओगे तो ये अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि विश्वामित्र मुनि को वैसे शिवजी द्वारा अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं, ऐसे दिव्य अस्त्रों का सामना कोई नहीं कर सकता। जब श्री राम को साथ में ले जाएंगे विश्वामित्र मुनि अवश्य इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान उनको प्रदान करेंगे। वैसे हे राजन, विश्वामित्र मुनि की शक्ति को आप नहीं जानते हो, ये तो सक्षम है स्वयं इन राक्षसों का वध करने में, परंतु अब ब्रह्मर्षि है वो, इसलिए ब्राह्मण को शोभा नहीं देता कि वो ऐसे क्षत्रियों के कार्यों को करें, इसलिए वो चाहते हैं कि आपका पुत्र राम आए और वो राम के गौरव या उनके ख्याति को बढ़ाना चाहते हैं, राम को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं सारे विश्व में। नहीं तो विश्वामित्र मुनि समर्थ है अपनी रक्षा करने में। तो फिर दशरथ महाराज ने जब इन बातों को सुनी अपने कुलगुरु से, उनका चित्त थोड़ा शांत हुआ और प्रसन्नता से फिर उन्होंने श्री राम को विश्वामित्र के हवाले कर दिया। चारों भाइयों में से लक्ष्मण और श्री राम की जोड़ी बनी और शत्रुघ्न और भरत इन दोनों की जोड़ी बनी। लक्ष्मण सदैव श्री राम के साथ में रहा करते थे, हमेशा श्री राम की सेवा करते थे। ठीक उसी प्रकार से भरत और शत्रुघ्न दोनों साथ में रहते थे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। जब लक्ष्मण ने सुना कि राम अब विश्वामित्र मुनि के साथ जाने वाले हैं तो उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा। तो विश्वामित्र मुनि ने दोनों श्री राम और श्री लक्ष्मण को साथ में लेकर चलना प्रारंभ किया। चलते चलते विश्वामित्र मुनि उनको अनेक कहानियां बताते जा रहे थे। वैसे पैदल जा रहे थे क्योंकि वो जंगल में जा रहे थे, जंगल में ऐसे बने बनाए रास्ते नहीं होते हैं, इसलिए रथ आदि वाहन नहीं चल सकते, तो पैदल ही जाना होता है। तो वे जैसे चलते चलते प्राय 20 किलोमीटर बीत गए थे कि वहां पर सरयू नदी के तट पर वो पहुंचे। वहां विश्वामित्र मुनि रुके राम और लक्ष्मण के साथ में और उन्होंने कहा कि मैं आपको दो अस्त्रों की के मंत्र जो है वो सिखाने जा रहा हूं, जिनका नाम है बला और अति बला। अब देखिए वैदिक काल में धनुर्विद्या कितनी सूक्ष्म थी, जो अस्त्र है वो भी कितने सूक्ष्म थे। आपने ब्रह्मास्त्र का नाम तो सुना होगा, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ब्रह्मास्त्र इतना भयानक अस्त्र है कि अनगिनत अणुबम जो है उनके समान है, परंतु अणुबम जब कहीं गिराया जाता है, जैसे कि 50-60 वर्ष पहले हुआ था जापान में, तो जितने भी चीजें आसपास में उन सबका विनाश कर देता है, परंतु ये ब्रह्मास्त्र जो है वो केवल उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का नाश करेगा जिनके लिए वो छोड़ा गया था, और केवल मंत्रों के द्वारा उनको छोड़ा जा सकता है। तो वैदिक धनुर्विद्या मंत्र विद्या पर आधारित थी, मंत्रों को सीखने पर फिर इन अस्त्रों का आह्वान हुआ करता था और फिर मंत्र उस व्यक्ति के काबू में होने के कारण वो उस अस्त्र का प्रयोग कर सकता था। कभी कभी ऐसे किसी को श्राप मिल जाता था कि ऐन वक्त पर तो मंत्र भूल जाओगे, जैसे कर्ण को हुआ था, तो फिर ऐन वक्त पर वो मंत्र याद नहीं आता उनको, वो अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। या कभी कभी आधा कुछ पता होता है दूसरा भाग नहीं पता होता है। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना पता था लेकिन वापस लेना पता नहीं था। ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिया परंतु वापस कैसे लेना ये नहीं पता। तो ऐसी समस्या भी कभी कभी हो जाती थी। परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि धनुर्विद्या कितनी सूक्ष्म विद्या थी उस समय। आजकल तो केवल बंदूक गोलियों से बात चलाते हैं, बम विस्फोट होता है, लेकिन वहां मंत्रों के द्वारा अस्त्र शस्त्र चलाए जाते थे और इन अस्त्रों का मूर्तिमान स्वरूप भी हुआ करता था। तो ये बला अति बला के कारण विश्वामित्र मुनि ने कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे, तुम बूढ़े नहीं होगे, थकावट तुम्हें कभी नहीं होगी और साथ साथ में तुम्हारे अंदर दिव्य ज्ञान और शक्ति भी आ जाएगी। वैसे तो श्री राम और लक्ष्मण स्वयं भगवान होने के कारण उनको ऐसे कोई अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, न कोई किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता है, न कोई बल आदि के वरदान की आवश्यकता है, परंतु वो तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने विश्वामित्र मुनि को अपना गुरु मान लिया था और उनसे बला अति बला इत्यादि ऐसे अस्त्रों की विद्या उन्होंने सीख ली। आगे चलते चलते गंगा और सरयू के संगम पर पहुंचे विश्वामित्र मुनि। चलते चलते उनको सारे तीर्थ स्थानों की पहचान कराए जा रहे थे, हर एक स्थान के बल्कि कि यहाँ ये पौराणिक कथा यहाँ पर हुई थी, वो कथा वहां पर हुई थी, यहाँ इस स्थान ये घटना हुई थी। तो ये जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, घटनाएं हैं, जैसा कि कल हम कह रहे थे, ये दंत कथाएं नहीं है, ये इतिहास है, वास्तव में ये घटित हुई है। तो विश्वामित्र मुनि श्री राम को बताए जा रहे थे और फिर कहा कि यहां जब सरयू और गंगा नदी का संगम है, इसी स्थान में शिव जी ने अपने तीसरे आंख को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। इस कथा को तो आपने सुना होगा कई बार। जब शिव जी तपस्या कर रहे थे तो देवताओं ने चाहा कि उनकी तपस्या को भंग कर दें, स्वयं कामदेव जिनके वश में सारी दुनिया है वो आए थे उनके ध्यान को भंग करने के लिए, परंतु शिव जी तो धीर पुरुष हैं, उनकी तपस्या उनका ध्यान कौन भंग कर सकता है भला। क्रोधित होकर उन्होंने अपने तीसरी आंख खोल दी, कामदेव को भस्म कर दिया। फिर आगे चलते चलते वो गंगा पार कर रहे थे एक नौके में बैठकर, परंतु जब गंगा जी के बीच में पहुंचे तो राम ने बहते हुए जल की ध्वनि सुनी। तो उन्होंने विश्वामित्र मुनि से कहा कि यहां तो कोई लहरें नहीं है, तो ये पानी बहने की आवाज कहां से आ रही है? तो विश्वामित्र मुनि ने जवाब दिया कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मन से उन्होंने एक सरोवर को उत्पन्न किया जिसका नाम है मानस सरोवर। मानस अर्थात मन से उत्पन्न होने वाला, और ये मानस सरोवर से ये सरयू नदी उत्पन्न हुई। आज ये मानस सरोवर के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में है, लेकिन आज जो मानस सरोवर दिखाई पड़ता है वो तो छोटा है, वैसे तो काफी बड़ा है लेकिन पहले जितना बड़ा था उतना नहीं है, और अभी तो केवल स्थूल रूप उसका हम देख पाते हैं। तो ये मानस सरोवर से सरयू नदी उत्पन्न हुई है और उसका जल यह आके गंगा से इस स्थान में मिलता है, तो इस जल के बहने की आवाज अब हम सुन रहे हैं। तो फिर आगे चलते चलते गंगा तो पार कर गए, आगे चलते चलते एक वन तक पहुंचे। उस वन में श्री रामचंद्र को एक अजीब सा कुछ महसूस हुआ अपने हृदय में। उन्होंने पूछा कि मुनिवर ये बताइए कि ये ऐसा क्यों है कि जैसे ही हम इस वन के निकट पहुंचे हैं हृदय में कुछ अलग सा लग रहा है, मानो कि कोई भय सा लगे, इतना भयानक क्यों लग रहा है ये वन? फिर इसका इतिहास भी बताने लगे विश्वामित्र मुनि। कहने लगे कि देवराज इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध की हत्या की थी तो उस समय उनको उनके ऊपर ये श्राप लग गया था, ये पाप लग गया था। तो इस पाप से मुक्त होने के लिए देवताओं ने उनका अभिषेक गंगा जल से कराया और फिर उनके जो पाप के फल हैं वो सब उस जल में आ गए और उस जल को लाकर देवताओं ने इस स्थान में छोड़ दिया। इसलिए यहाँ पे एक भयानक जंगल उत्पन्न हुआ। लेकिन इंद्र ने देखा कि मैं तो पापों से मुक्त हो गया, परंतु इस प्रांत ने मेरे सारे पाप स्वीकार कर लिए, भयानक जंगल बन गया, तो मुझे कोई वरदान भी देना चाहिए। तो उन्होंने वहां वरदान दिया कि यहाँ समृद्धि संपत्ति खूब होगी, प्रचुर मात्रा में यहाँ सब लोग बहुत समृद्ध होंगे। लेकिन वहां थोड़े समय बाद एक राक्षसी आई जिसका नाम था ताटका और वो उसके पुत्र का नाम था मारीच। तो ये ताटका राक्षसी बहुत भयंकर राक्षसी थी और सब जगह वो जाके उत्पात करती थी। तो ताटका के कारण कोई लोग वहां रह नहीं पाए, वो सब वहां से निकल गए। ये सारा प्रांत खाली हो गया। पहले जहां बहुत ऐश्वर्यों से संपन्न राज्य रहा करते थे, आज यहाँ कोई नहीं रहता, केवल ये ताटका राक्षसी रहती है और थोड़े और राक्षस रहते हैं उनके साथ में। ये है तो महिला और राम, ये तो विधि है, एक नियम है कि किसी क्षत्रिय को या किसी को भी एक स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, परंतु इसे स्त्री समझ के छोड़ना नहीं, ये बहुत भयंकर राक्षसी है। तो श्री राम ने विश्वामित्र मुनि के आदेश का पालन किया, शिरोधारी, ठीक है, जो आदेश मुनिवर, अपने धनुष को तैयार किया और उस धनुष के तीर को से आवाज निकाली। वो ध्वनि भी इतनी भयानक थी, वो ध्वनि सब जगह गूंजने लगी। ताटका जो कि अपने निवास स्थान में थी, बहुत क्रोधित हो गए कि मेरे प्रांत में आके किसकी किसको ऐसे साहस हुआ कि ऐसे ध्वनि करे। समझ गए कि धनुष की ध्वनि है। तो तुरंत क्रोधित होकर ताटका वहां पर चली आई। ताटका को ने श्री राम को देखा और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ताटका राक्षसी थी, तरह तरह के योग सिद्धियां थी ताटका के पास, माया, तरह तरह के माया अस्त्र थे और इनके द्वारा श्री राम को प्रभावित करने का या हराने की चेष्टा उन्होंने की, लेकिन नहीं हो पाई। श्री राम ने अपने अस्त्रों से नाक कान आदि कटवा दिए ताटका के, फिर भी ताटका वहां से ओझल हो गई, दूसरी जगह से उत्पन्न हो गई, एक तूफान उत्पन्न कर दिया। जब ऐसे युद्ध चल रहा था, विश्वामित्र मुनि ने कहा श्री राम से कि हे राम, अब विलंब न करो, अब राक्षस जैसे जैसे सूर्यास्त का समय आता है वैसे वैसे इनकी शक्ति बढ़ती है, इसलिए अब तुरंत इसकी हत्या कर दो। तो श्री राम ने फिर तीर छोड़कर ताटका की हत्या कर दी। तो ताटका का वध हो गया। सारे देवतागण बड़े प्रसन्न हुए और वहां पे आगे चल के चलते चलते जब सारा स्थान पवित्र हो गया था, विश्वामित्र मुनि के बड़े प्रसन्न हुए थे और फिर आगे चल के और एक स्थान में विश्वामित्र मुनि रुके श्री राम के साथ। अनेक अस्त्रों की विद्या भी प्रदान की विश्वामित्र मुनि ने उस समय, क्योंकि देवतागण आए थे उनके पास कि कृपया आप श्री राम को जितने भी आपके पास अस्त्रों की विद्या है वो सब सिखा दीजिए। विश्वामित्र मुनि ने बड़े प्रसन्नता से इनको सिखाया। ये सारे अस्त्र अपने मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हुए विश्वामित्र मुनि रामचंद्र भगवान के सामने और कहा कि क्या आदेश है। श्री रामचंद्र ने उत्तर दिया कि जब मैं आपका स्मरण करूंगा तो आप मेरे पास आना। तो देखिए कितनी सूक्ष्म विद्या है। ऐसे कभी हो सकता है कि हमारे मन में विचार हो कि बंदूक आ जाए, बंदूक आ गई हाथ में? नहीं होता, परंतु वैदिक काल में इस तरह के शस्त्र हुआ करते थे। पुष्पक विमान भी उसी प्रकार का था, कुबेर का था, रावण ने छीन ली और फिर श्री राम को ये पुष्पक विमान मिल गया। केवल विचार करने से कि पुष्पक विमान आओ मेरे सामने, पुष्पक विमान आ जाता था। तो खैर ये सारे अस्त्र जो हैं श्री राम की सेवा के लिए तत्पर रहते थे, सदैव श्री राम के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। आगे चलते चलते वो पहुंचे सिद्धाश्रम, जो कि विश्वामित्र मुनि का आश्रम था। वहां उनके अनेक शिष्य थे, वो भी सामने आए। उन्होंने सब स्वागत किया श्री राम और श्री लक्ष्मण का, और उस स्थान का इतिहास बताने लगे विश्वामित्र मुनि। वो कहने लगे कि यहाँ पे वामन देव भगवान रहा करते थे। जब देवतागण एक बार बहुत विचलित थे, क्योंकि बलि महाराज ने जो कि असुरों के राजा थे, उन्होंने देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था और उनको बाहर निकाल दिया गया था स्वर्गलोक से। तो इस समय कश्यप ऋषि आदि यहां पर आए थे सिद्धाश्रम में, यहां भगवान से मिले थे, उनसे कृपा याचना की थी कि आप कृपया मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाइए और फिर बलि महाराज से उनका राज्य छीन लीजिए। इसी स्थान में भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी थी तथास्तु कहके। आगे चल के वो वामन देव के रूप में प्रकट हुए, और वामन देव की कथा तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। और फिर विश्वामित्र मुनि बताने लगे कि मैं जानता हूं कि आप स्वयं वही वामन देव हैं जिन्होंने पहले सब कुछ बलि महाराज से हरण कर लिया था। आज आप मेरा उद्धार करने के लिए मेरे सामने प्रकट हुए हैं। तो विश्वामित्र मुनि भली भांति जानते थे कि जो उनके शिष्य हैं वो वास्तव में स्वयं भगवान हैं। फिर भी शिष्य को अपना या गुरु को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है, भले उनका शिष्य भगवान भी क्यों ना हो। जैसे नंद महाराज वृंदावन में बताया करते थे ब्रजवासियों को, जबकि ब्रजवासी आया करते थे नंद महाराज के पास, कि आपका बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं लगता, उसने ये गोवर्धन पर्वत भी धारण कर लिया है, शायद आपका बच्चा भगवान भी हो सकता है, कोई देवता भी हो सकता है, पता नहीं आपका बच्चा बड़ा अद्भुत है। तो नंद महाराज जवाब देते, वो कोई भी क्यों ना हो, भगवान भी क्यों ना हो, है मेरा पुत्र, इसलिए मेरा काम है पुत्र को डांटना जब वो कोई गलत काम करे, नहीं तो वो अच्छा कैसे होगा आगे चल के, नेक इंसान कैसे होगा। तो विश्वामित्र मुनि भी जानते थे कि ये भगवान हैं, परंतु अपनी सेवा कर रहे थे भगवान को, गुरु बने थे, गुरु बनना भी एक सेवा है। तो फिर वो बताने लगे कि यहां पे अब ये दो भयंकर राक्षस रहते हैं राम, अब तैयार हो जाएगी, जैसे ही हम यज्ञ संपन्न करने जाएंगे, यज्ञ की समाप्ति जैसे होने निकट आएगी तब ये आएंगे। तो श्री राम और लक्ष्मण खड़े हुए वहां पर अपने धनुष तीर को तैयार रखते हुए कि आप निडर रहिए हे मुनिवर, आपके यज्ञ आदि प्रारंभ कीजिए। तो सारी व्यवस्था हो गई, विश्वामित्र मुनि के जितने भी शिष्य थे वो भी आ गए, और 6 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा बिना कोई रुकावट के। 7वें दिन जब यज्ञ समाप्त होने जा रहा था, उस समय मारीच और सुबाहु दोनों आसमान से उड़ते हुए आए और तरह तरह के गंदे वस्तुओं को वहां यज्ञ स्थली के ऊपर फेंकते गए, दूषित करते गए यज्ञ स्थली को। उस समय श्री रामचंद्र ने एक जगह खड़े होकर अपने धनुष से मारीच के वक्षस्थल में एक अस्त्र भेज दिया, और मारीच को इतना धक्का लगा कि उस एक बाण के कारण वो 800 योजन दूर चला गया, अनेक मील दूर समुद्र में 800 योजन दूर अंदर चला गया मारीच। वैसे श्री राम ने कहा कि इसके भाग्य में अभी मृत्यु नहीं लिखी है, इसलिए इसको मारूंगा नहीं, जान से नहीं मारूंगा। और मारीच की आगे भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सीता देवी के अपहरण के लिए रावण ने मारीच का प्रयोग इस्तेमाल किया था, तो रामचंद्र भगवान को पता था कि इसकी और भी सेवा है आगे चल के। हाँ, असुर भी सेवा करते हैं ना, असुर नहीं होते कि भगवान की लीला कैसे होती। रावण नहीं होता तो भगवान आते ही नहीं, फिर हम राम कथा कैसे सुनते, कैसे भगवान श्री राम के बारे में जानते। तो खैर, मारीच को समुद्र में 800 योजन दूर भेज दिया। और आप जानते हैं कि जिस स्थान में मारीच गिर पड़े उस स्थान का नाम आज क्या है? मॉरिशियस। अफ्रीका के पूर्व भाग में है। तो मारीच उस स्थान में गिरे, इसलिए उनके बाद ये नाम स्थान का हुआ मॉरिशियस। ऐसे ही इतिहास, भूगोल, प्राचीन भूगोल इतिहास पढ़े तो बड़ा आनंद आता है। ये सारी चीजें शास्त्र, पता चलता है कि शास्त्रों में जो की गई बातें हैं वो सही हैं, सत्य हैं, काल्पनिक नहीं है। उधर सुबाहु का वध तो कर दिया श्री राम ने एक तीर से। काफी विस्तार में वर्णन करते हैं वाल्मीकि ऋषि, परंतु हम सब संक्षेप में ही बातें बता रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि बहुत प्रसन्न हुए, बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे अपने शिष्यों की। ऊपर देवलोक से फूलों की वृष्टि करने लगे देवतागण। और थोड़ा समय ऐसे बीत गया, फिर विश्वामित्र मुनि ने श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि हम अब जा रहे हैं मिथिला, क्योंकि वहां राजा जनक एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं, तो यदि आप भी आओ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इस यज्ञ के समय एक शिव जी का धनुष भी वहां रखा गया है जो बहुत बड़ा है। शिव जी ने ये मिथिला के राजाओं के वंश में, उनके जो पूर्वज हैं, उनके राजा का नाम था देवराज, उनके हवाले कर दिया था। और उसी वंश में ये शिव जी का धनुष चलते आया है, आज भी राजा जनक के पास है। इसलिए राजा जनक के दरबार में हम सब जा रहे हैं, तो कृपया आप भी हमारे साथ में आइए। विश्वामित्र मुनि जानते थे कि राजा जनक अपनी कन्या सीता देवी के विवाह के लिए कोई योग्य वर ढूंढ रहे थे। तो विश्वामित्र मुनि की भूमिका रामलीला में कितनी महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र मुनि के कारण श्री राम और सीता का विवाह हुआ। वैसे सीता देवी और श्री राम ये तो सदैव इनकी युगल जोड़ी है। भगवान के धाम में, जो कि भौतिक सृष्टि के परे है, वहां पर श्री राम और सीता शाश्वत रूप से रहते हैं, अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। समय समय पर संभवामी युगे युगे वो यहां प्रकट हो जाते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि कई वर्षों तक वो मिले नहीं, पहली बार फिर मिलते हैं। तो इसी तरह से ये लीला केवल हम सबके उद्धार के लिए, हम सबके हृदय की प्रसन्नता के लिए ऐसे होते हैं, क्योंकि ये सब नर लीला है। तो यद्यपि श्री राम और सीता सदैव धाम में इकट्ठे साथ में रहते हैं, यहां पर ऐसी लीला हुई कि दोनों एक दूसरे के दर्शन 16 वर्षों तक नहीं कर पाए। श्री रामचंद्र तैयार हुए और वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि 100 ऐसे बड़े बड़े रथ थे या गाड़ियां थी जिनमें सारी सामग्री वाल्मीकि मुनि के शिष्य ने लगा दी, जो कि यज्ञ के लिए आवश्यक थी। तो ऐसे चलते चलते वो आगे चले गए, शोण नदी के तट में पहुंचे। उस स्थान का जो इतिहास था उसका वर्णन विश्वामित्र मुनि ने किया। देखिए, ऐसी प्रथा थी जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको सारे पौराणिक कथाएं पता थी। जब पांडव भी वनवास में गए थे तो उनके साथ भी अनेक ब्राह्मण और ऋषिगण आए थे, धौम्य आदि, और प्रतिदिन सारे पांडव उनके सामने बैठ के पौराणिक कथाएं सुनते थे। विशेषकर युधिष्ठिर महाराज को इन कथाओं में बहुत रुचि थी, अनेक घंटों तक लगातार बैठ के सुनते थे। परंतु भीम आदि उनका स्वभाव थोड़ा और क्षत्रिय स्वभाव ज्यादा था, अर्जुन भी थोड़े बेचैन हो रहे थे, द्रौपदी देवी भी बेचैन हो गई थी कि भी हमारे पति या हमारे भाई हैं, बड़े आराम से यहाँ बैठकर ब्राह्मणों से पौराणिक कथाएं सुने जा रहे हैं, हमारे राज्य का क्या होगा, हमारा इतना अपमान हुआ, हम यहाँ पर हैं। यहाँ तक कि द्रौपदी देवी कहने लगी कि सबसे बड़ा कष्ट इस दुनिया में ये है कि किसी को क्षत्रिय कुल में जन्म लेना, क्योंकि ऐसे क्षत्रिय कुल में जब किसी का अपमान होता है तो वो मृत्यु से भी ज्यादा सहन करने के लिए मुश्किल होता है। तो कहने कि युधिष्ठिर महाराज तो इन ब्राह्मणों से कथाएं सुनते गए, पौराणिक कथाएं, उनको सांत्वना देते रहे कि नहीं, हमें धर्म के पथ को छोड़ना नहीं चाहिए, धर्म परायण रहना चाहिए। राज्य आएंगे जाएंगे, धन आएगा जाएगा, परंतु धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जीवन में संकट आएंगे, सुख दुख आते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, बिन बुलाए आएंगे, बिन भेजे हुए चले जाएंगे, दोनों सुख और दुख। इसलिए व्यक्ति को परिश्रम नहीं करना चाहिए आवश्यकता से अधिक सुख को प्राप्त करने के लिए या दुख से मुक्त होने के लिए। अपने प्रारब्ध में जितना सुख दुख लिखा है उतना आकर ही रहेगा, इसलिए अधिक समय और प्रयास हमें भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। तो खैर, पौराणिक कथाएं विश्वामित्र मुनि को भी पता वैसे ज्ञान थी, तो बोलते गए। श्री राम और लक्ष्मण बड़े ध्यान से सुनते रहे और फिर अंततः वो गंगा नदी के तट पर पहुंचे। गंगा जी के तट पर उन्होंने उनको कार्तिकेय के जन्म के बारे में सुनाया, काफी विस्तार में वाल्मीकि जी सुनाते हैं। देवताओं को एक सेनापति की आवश्यकता थी और फिर स्कंद या कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय के माताओं को आप देख सकते हैं, ऊपर आप में से जो जानते हैं नक्षत्र है कृत्तिका, रोहिणी नक्षत्र के पास में दिखाई पड़ता है आसमान में, उनके नाम है कृत्तिका, छह हैं ये, जो धात्री बने इस पुत्र के लिए जो शिव जी से उत्पन्न हुए थे वास्तव में, और इसलिए उनका नाम हुआ कार्तिकेय, कृत्तिका से कार्तिकेय। तो कार्तिकेय का जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने गंगा जी के प्राकट्य का अप्राकट्य की कथा सुनाई राम और लक्ष्मण को और बताने लगे कि एक राजा थे इक्ष्वाकु के वंश में, अर्थात वो भी श्री रामचंद्र के पूर्वज थे, उनका नाम था सगर। ये सगर नाम कैसे हुआ, क्योंकि जब वो अपने मां के गर्भ में थे तो मां की जो या उनकी जो मां थी, उन राजा की जो और पत्नियां थी, सपत्नियां थी, उन्होंने इस रानी को विष पिलाया थोड़ा 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 सा, क्योंकि उनको ईर्ष्या हो गई थी, इनको पुत्र हुआ हमें नहीं। तो इस पुत्र का जन्म हुआ उस विष के साथ में, पहले से आदत पड़ गई थी विष लेते लेते, इसलिए शरीर को कोई हानि नहीं पहुंची, इसलिए उनका नाम हुआ सगर, जिसका जन्म विष सहित हो गया है। तो सगर राजा की दो रानियां थी, केशिनी और सुमति, तो उनके कोई संतान नहीं थे, तो लंबे समय तपस्या करने के बाद पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन उनको वरदान ये मिला था कि ठीक है, आपकी दो रानियां हैं, एक रानी को एक पुत्र होगा जो आगे चल के आपके वंश को आगे चलाएगा और दूसरे रानी को 60,000 पुत्र होंगे। तो फिर रानियों ने पूछा किसको एक पुत्र मिलेगा, किसको 60,000 मिलेंगे, तो उत्तर यह है कि वो आप चयन कर लो। फिर केशिनी ने चयन किया कि मुझे एक पुत्र चाहिए और सुमति ने कहा मैं 60,000 पुत्र स्वीकार करूंगी। तो उस जमाने में संभव था, आज एक बच्चे को संभालना इतना मुश्किल है, वहां 7,000 बच्चे की कल्पना भी नहीं कर सकते हम। तो खैर प्रीत का जन्म तो हो गया। अब केशिनी के जो एक पुत्र थे उसका नाम था असमंजस, ये बड़ा दुष्ट था, अपने मित्रों को नदी आदि में डाल के उनकी हत्या कर देता था। तो जब ये बड़ा हुआ तो इतना क्रूर निकला कि राजा के सामने और कोई रास्ता नहीं था, उसे वनवास में भेज दिया। असमंजस के एक पुत्र थे जिनका नाम था अंशुमान। एक दिन सगर महाराज ने इच्छा की कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, जैसे दशरथ महाराज ने आप बाद में किया था, इसका वर्णन हम कर चुके हैं। तो घोड़ा तो उन्होंने छोड़ दिया सब जगह, और उनके 60,000 पुत्र जो हैं वो घोड़े के पीछे गए। घोड़े इधर उधर जा रहे थे कि इंद्रदेव ने देखा कि ये सगर महाराज जो है ये अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। तो इंद्रदेव को ऐसे कभी खतरा लगता है कि कोई उनका कुर्सी न छीन ले। तो फिर जब ये घोड़ा मिला नहीं तो सब ये भाई ढूंढते हुए इधर उधर चले गए कहां, और राजा सगर ने कहा कि और ढूंढो। ऐसे खुदाई करते करते वो रसातल तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आश्रम है और घोड़ा वहां पर है, और पास में ही कपिल मुनि बैठे थे। कपिल देव जो भगवान के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। तो 60,000 पुत्र थे सगर महाराज के, उन्होंने सोचा कि इस मुनि ने चोरी कर दी, पकड़ के रखा है। तो आक्रमण करने जा रहे थे, कपिल मुनि ने अपने हुंकार मात्र से उनके शरीर को राख कर दिया, भस्म कर दिया। ये है ब्रह्म तेज। तो जब हो गए तो अनेक काफी समय तक जब ये पुत्र वापस नहीं आए तो सगर महाराज ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा कि जाओ ढूंढो। ढूंढते यहां पर आप पहुंचे। घोड़ा तो मिला लेकिन यहां केवल राख था। उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ है। उस समय गरुड़ जी वहां प्रकट हुए। गरुड़ जी ने कहा कि हे राजकुमार, इसके लिए एक ही रास्ता है। यह हुआ यह है कि आपके जो चाचा यहां पर आए थे कपिल देव के शाप के कारण तो उनकी ये दशा हुई है, लेकिन यदि आप गंगा को लाओगे तो गंगा जी के जल से जब स्पर्श होगा इनके शरीर के राख का तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो गरुड़ जी कह के तो चले गए वापस घोड़े को लेकर। अंशुमान सगर महाराज के पास गए, अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। और फिर सगर महाराज ने प्रयास किया कि कैसे गंगा को लाया जाए। उन्होंने वैसे ब्रह्मा जी से प्रार्थना की परंतु वो सफल नहीं हो पाए। उनके बाद अंशुमान ने बहुत प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें गंगा जी को लाना होगा, यहाँ पे तपस्या करने के बाद भी नहीं सफल हो पाए। उनके पुत्र का नाम था राजा दिलीप, वो भी नहीं सफल हुए। फिर हुए राजा भगीरथ। भगीरथ महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा गंगा तो आ सकती है परंतु गंगा जी के प्रवाह को सहन करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति चाहिए, और वो शिव जी ही कर सकते हैं। गंगा जी जब आकाश पथ से होकर स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर गिरेगी तो इतना तीव्र प्रवाह होगा कि आप उसको सहन नहीं कर पाओगे, पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। आप में से जो हिमालय में गए हैं आपने वहां पहाड़ों में देखा होगा कि गंगा जी का प्रवाह कितना तीव्र है। वैसे हरिद्वार में जब आप स्नान करने जाएंगे देखेंगे कि तट पे जिलाधिकारियों ने वो जंजीर बांधे हैं लोहे के, ताकि आदमी जब स्नान करे तो उस जंजीर को पकड़ के डुबकी लगाए, नहीं तो सीधे कलकत्ता पहुंच जाएंगे। बिना कोई शुल्क के निःशुल्क यात्रा हो जाएगी कलकत्ता। इतना तेज प्रवाह है जल का और यहाँ इतना तेज है तो हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि जब गंगा जी स्वर्ग लोक से बहती हुई आई थी तो प्रवाह कितना तेज हुआ होगा। तो फिर अंशुमान या भगीरथ महाराज ने शिव जी की उपासना की। शिव जी का नाम है आशुतोष। आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब संतुष्ट होना, प्रसन्न होना। शिव जी का नाम आशुतोष इसलिए है कि वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी प्रकट हुए और भगीरथ महाराज की इच्छा को उन्होंने पूर्ण की, ठीक है मैं गंगा जी को अपने सर पे स्वीकार करूंगा। श्रीमद् भागवत में यह बताया गया है कि गंगा जी की एक चिंता थी कि जब मैं यहां पहुंच जाऊंगी तो सारे लोग मेरे जल में स्नान करेंगे पाप से मुक्त होने के लिए, पाप उस पर वो धुल जाएंगे लेकिन ये पाप का बोझ मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तो उस समय भगीरथ महाराज जो कि बहुत बुद्धिमान थे कहने लगे कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब भगवान के भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तो आपके जल को शुद्ध करेंगे, क्योंकि सारी चीजें जो है जो पाप पड़े हुए हैं उनके कारण इस सारी नदी पवित्र हो जाएगी। हालांकि भक्त कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, भक्त तो गंगा जी में स्नान करते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। तो खैर गंगा जी आई बहते हुई, इतना तीव्र प्रवाह की देखा नहीं जा सकता था, लेकिन जैसे ही गंगा जी ने देखा कि शिव जी वहां बैठे हैं तो उनको लगा अरे रे मैं तो अशुद्ध हो जाऊंगी, क्यों शिव जी के शरीर में राख रहता है, सांप रहते हैं। वैसे शिव जी को समझना बहुत मुश्किल है, शिव जी सदैव दिव्य स्थान में स्थित रहते हैं, परंतु तमोगुण के अधिष्ठाता देव होने के कारण उनकी सेवा बहुत मुश्किल की सेवा है। उनको ऐसे लोगों का उद्धार करना पड़ता है, ऐसे लोगों की रक्षा करनी पड़ती है जो घोर तमोगुण के अंधकार में रहते हैं, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच आदि, या जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं सदा तमोगुण में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में उनको रहना पड़ता है उनका उद्धार करने के लिए। यह शिवजी की महिमा है, करुणा के समुद्र हैं शिव जी, इसलिए ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं उनके उद्धार के लिए। तो गंगा देवी इस बात को नहीं समझ रही थी, तो गंगा देवी को चेहरे को देख लिया शिव जी ने। शिव जी ने कुछ तो समझ लिए कि गंगा देवी के चेहरे पर थोड़ी घृणा सी दिख रही है, तो शिव जी ने सोचा ठीक है अब गंगा जी को ठीक करते हैं। तो जैसे गंगा जी आई उन्होंने अपने जटा में उनको धारण कर लिया और गंगा जी का प्रवाह तो तीव्र था ही, वो घूमते घूमते निकलना चाहती थी लेकिन शिव जी ने अपने जटाओं में पकड़ कर रख लिया, एक बूंद भी बाहर नहीं निकल पाया। गंगा जी ने बहुत प्रयत्न किया, घूमी घूमी बहुत जोर से घूमी लेकिन शिव जी के जटाओं से निकल नहीं पाई। तब गंगा जी थोड़ी शांत हो गई और फिर शिव जी ने देखा कि ठीक है अब छोड़ा जा सकता है, तो गंगा जी का जल फिर उत्पन्न होने लगा, इसलिए शिव जी का एक नाम है गंगाधर। तो फिर जैसे ही गंगा जी ने पृथ्वी का स्पर्श किया, सात नदियां हो गई, वैसे उनमें से एक नदी का प्रवाह जो है जल है वो भगीरथ महाराज के पीछे चलता गया। भगीरथ महाराज आगे आगे अपने रथ पे सवार होकर चले जा रहे थे, वो ले जा रहे थे उनको अपने पूर्वजों के शरीर के जो राख थे उस स्थान में, क्योंकि उनका उद्धार करना जो था यही तो उद्देश्य था उनका। तो वो चलते गए और पृथ्वी लोक से होकर फिर वो रसातल में भी गए और वहां पे गंगा जी का स्पर्श उनके शरीर के राख से हुआ, उनका उद्धार हो गया, उनको स्वर्गलोक की गति प्राप्त हो गई। गंगा जी अलकनंदा कहलाती हैं। स्वर्गलोक में यह मंदाकिनी और पाताल लोक आदि रसातल आदि लोक में भोगवती है, वही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है। बीच में जैसे ही भगीरथ महाराज अपने रथ पे बैठकर चले जा रहे थे, गंगा जी पीछे पीछे आ रही थी, तो एक आश्रम पास में निकला एक ऋषि का जिनका नाम था जहनु। तो गंगा जी तो प्रवाह जल के प्रवाह से जा रही थी, आश्रम में आके उन्होंने तहस नहस कर दिया। जहनु ऋषि को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने सारे जल को निकल लिया। ऐसे भी ऋषि हुआ करते थे। वैसे आप में से जो आयुर्वेदिक पंचकर्म पद्धति से परिचित हैं, आप जानते हैं कि एक वमन विधि होती है जिसमें आप खूब दूध पिलाते हैं, इतना पिलाते हैं कि जब बिल्कुल जगह नहीं रहता फिर भी आपको लेना पड़ता है। तो ऐसे 5 गिलास 10 गिलास बीच जितने भी हो सके, तब पता चलता है कि पानी या दूध पीने में पेट कितना जल्दी भर जाता है। लेकिन जहनु ऋषि ने सारे गंगा जी का पान कर लिया, अंदर रखा। अब भगीरथ महाराज चिंतित हो गए, अब क्या होगा। तो जहनु ऋषि के सामने आके कृपा याचना की, जरा छोड़ दीजिए। फिर जहनु ऋषि ने कृपा कर दी और अपने कान से निकाल दिया गंगा जी के जल को। इसलिए गंगा जी को जहनु ऋषि की पुत्री भी माना जाता है, इसी के नाम से वो जानी जाती है। इसलिए उनका नाम है जाह्नवी। गंगा जी का एक और एक नाम है। और वैसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था भगीरथ महाराज को, क्योंकि आपके कारण गंगा जी पृथ्वी प्रकट होंगी, इसलिए वो आपके पुत्र के समान होंगी। इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथी भी है। तो इस तरह से गंगा जी का प्राकट्य हुआ और विश्वामित्र मुनि ने ये कथा सुनाई। और फिर आगे चल के विशाल नाम के प्रांत में आए, वहां का इतिहास उन्होंने सुनाया। और पहुंचते पहुंचते फिर आखिर वो पहुंचे एक स्थान में। श्री राम ने पूछा कि ये आश्रम किसका है, ये स्थान क्या है। उन्होंने कहा ये गौतम ऋषि का आश्रम है। बहुत पहले की बात है, अनेक वर्ष पहले गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या देवी से के साथ में यहां निवास करते थे। एक बार हुआ ये कि गौतम ऋषि नदी में स्नान आदि करने के लिए गए थे कि उस समय इंद्रदेव आए, अहल्या के साथ रहना चाहते थे, जो कि बहुत अनैतिक कार्य था। परंतु इंद्रदेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया अहल्या देवी ने। इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया था, परंतु जब वो वापस जा रहे थे तो उसी समय गौतम ऋषि लौट के आए। गौतम ऋषि ने देखा कि मेरे जैसे ही दिखने वाला कोई व्यक्ति निकल रहा है, समझ गए कि तुरंत ही इंद्रदेव हैं। उन्होंने श्राप दे दिया। तो इंद्र वहां से चले तो गए, लेकिन अपनी पत्नी को भी उन्होंने श्राप दिया कि तुमने ऐसे कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर बन जाओगी और तुम्हें इसी तरह से यहां खड़े होकर सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। कृपा याचना करने पर गौतम ऋषि ने कहा कि ठीक है। जब अनेक वर्षों बाद भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होंगे यहां पे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि यही वो स्थान है। और जैसे ही श्री राम उस आश्रम में या उस जगह में प्रवेश कर गए, वैसे ही वो पत्थर का परिवर्तन हो गया, पुनः वो अहल्या देवी के रूप में प्रकट हो गई। बहुत तेजस्वी रूप उनका था। वाल्मीकि जी समझाते हैं कि कोई राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र के अलावा को देख नहीं पा रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया अहल्या देवी के चरणों में, चरण स्पर्श किए कि हे माते हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। अहल्या देवी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान की योजना से उस समय वहां पर गौतम ऋषि भी लौट के आए। तो फिर अहल्या देवी और गौतम ऋषि फिर से एक साथ में रहे। तो ये कथा कह के फिर विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को आगे ले गए, वहां मिथिला नगरी के बाहर पहुंचे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि बड़े धूमधाम से एक विशाल यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। मिथिला की प्रजा जो है बहुत प्रसन्नता से इधर उधर अलग अलग तरह के कार्य में व्यस्त हैं। जनक महाराज को खबर पहुंची कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। शीघ्रता से वो नगरी के बाहर आए, उनका स्वागत किया और फिर उनको वापस ले गए। वहां पे आके दरबार में उनका स्वागत जब हुआ तो शतानंद नाम के एक ऋषि थे, जो वास्तव में गौतम ऋषि और अहल्या देवी के पुत्र थे। तो शतानंद मुनि ने विश्वामित्र मुनि से कहा कि कृपया मेरे माता के उद्धार की कथा आप सुनाइए। तो विश्वामित्र मुनि ने सबके सामने सुनाया कि कैसे श्री राम के द्वारा उनका उद्धार हुआ। फिर शतानंद ऋषि ने विश्वामित्र मुनि की कहानी सुनाई, उनका इतिहास। बहुत अद्भुत इतिहास है, काफी लंबा इतिहास है। हमें तो इस समय इतना समय नहीं है कि हम वो सारी कथा बताएं, परंतु तो संक्षेप में बताएंगे कि विश्वामित्र वैसे एक राजा थे और एक बार अपनी सेना को लेकर वो वन में भ्रमण कर रहे थे तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम पे आ पहुंचे। वशिष्ठ मुनि ने उनका स्वागत किया। विश्वामित्र मुनि जब जाना चाहते थे तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं नहीं, कृपया आप बैठ जाइए यहीं पे और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। और उन्होंने अपने कामधेनु गाय, जिसका नाम था सबला, उसको आदेश दिया और बहुत बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो गई। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन सबला के इच्छा करने मात्र पर प्रकट हो गए और न केवल विश्वामित्र मुनि लेकिन उनके साथ में जितने भी सैनिक थे, काफी बड़ी संख्या में थे, सबकी सेवा उन्होंने कर दी। विश्वामित्र मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक गाय के द्वारा ऐसी व्यवस्था, ऐसी समृद्धि तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा वशिष्ठ मुनि से कि कृपया मुझे गाय आप दे दीजिए, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये गाय तो मेरी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करती है, यज्ञ की सामग्री आदि मुझे वो प्रदान करती है, इसलिए मैं तो नहीं दे सकता। तो विश्वामित्र मुनि ने बहुत आग्रह किया, फिर भी वशिष्ठ मुनि नहीं माने। विश्वामित्र मुनि को क्रोध आया, मैं राजा हूं, सब कुछ राजा की संपत्ति होती है, तो मैं छीन कर जबरदस्ती बलपूर्वक ले जाऊंगा। जब बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया तो शबला ऋषि को, शबला को ले जा रहे थे, शबला ने वशिष्ठ मुनि की ओर देखा कि हे मुनिवर, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करोगे? वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मेरी शक्ति उतनी नहीं है, राजा की शक्ति तो बहुत अधिक है। फिर सबला ने कहा कि नहीं, आप नहीं जानते आपकी शक्ति क्या है, आपकी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए, देखिए क्या चमत्कार होता है। फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा ठीक है। तो सबला ने अपने योग शक्ति से अनेक सैनिकों को उत्पन्न किया, जिन्होंने कि विश्वामित्र की सेना से युद्ध किया। विश्वामित्र मुनि ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन और सैनिक उत्पन्न हो गए। इस तरह से विश्वामित्र मुनि के अलावा और कोई बचा नहीं। तब विश्वामित्र मुनि हैरान हो गए, उस समझने लगे कि धिक्कार हो मेरे क्षत्रिय हो पद का, धिक्कार हो मेरे विश्व सम्राट बनने का, राजा बनने का, क्या फायदा है, इतना बड़ा क्षत्रिय मैं बन गया हूं परंतु ऐसे एक जंगल में रहने वाले ब्राह्मण की शक्ति के सामने मैं तो कहीं का नहीं रह गया, तो मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है। ये ब्रह्म तेज क्या है मैं समझ गया हूं, मुझे ये ब्रह्म शक्ति चाहिए। तो फिर उन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ठीक है मैं आपको राज ऋषि का पद देता हूं, बड़े नाप्रसन्न होकर राज ऋषि से क्या होगा, राज ऋषि नहीं मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, क्योंकि राज ऋषि से ऊपर है महर्षि, महर्षि से ऊपर है ब्रह्म ऋषि। फिर वैसे और काफी लंबी कहानी है, आगे बढ़ते बढ़ते तपस्या करते करते ऐसी भयानक तपस्या विश्वामित्र मुनि ने की कि आजकल के युग में तो ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बीच में उनका पतन भी तरह तरह समय समय पर होता रहा, मेनका के द्वारा भी, और आगे चल के त्रिशंकु की कथा भी आई। त्रिशंकु की कथा शायद आप भी जानते होंगे। त्रिशंकु भी एक इक्ष्वाकु वंश में आने वाले राजा थे। वो उसी शरीर से, इसी शरीर में स्वर्गलोक में जाना चाहते थे, परंतु ये तो संभव नहीं है। वशिष्ठ मुनि के पास गए, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो उनके पुत्रों के पास गए कि आपके पिता ने मना किया, आप तो कर दो। पुत्रों को बड़ा क्रोध आया, जब हमारे पिता ने मना किया तो हमारे पास क्यों आए हो? तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम चांडाल बन जाओ। जब चांडाल बन गए तो उनके मंत्रियों ने भी उनको त्याग कर दिया। तो अब क्या किया जाए? बेचारे त्रिशंकु गए विश्वामित्र मुनि के पास। विश्वामित्र मुनि के हृदय में एक स्पर्धा की भावना थी वशिष्ठ मुनि के प्रति। ठीक है, उन्होंने मना किया, मैं कर देता हूं आओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने तपस्या की, तो उन्होंने अपने योग बल पर त्रिशंकु को ऊपर भेजा। लेकिन स्वर्ग लोग में देख रहे थे इंद्र, अरे ये कौन आ रहे हैं, इनका वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, यूं ही आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वापस जाओ। तो त्रिशंकु फिर उल्टे वापस गिर रहे थे, हे मुनिवर बचाइए बचाइए, मैं वापस आ रहा हूं। तो उस समय विश्वामित्र ने देवताओं से निवेदन किया कि रखिए उनको आप। इंद्रदेव ने कहा तो संभव नहीं है, इसके पुण्य इतने हैं नहीं कि हम उनको स्वर्ग में ले लें। क्रोध आया विश्वामित्र मुनि को। अपने सिद्धियों के बल पर उन्होंने एक और ऐसे लोक या ग्रह ही प्रकट करा दिया, इसमें नकली देवता गण थे सारे, सब नकली स्वर्ग लोग उत्पन्न कर दिया। और देवताओं ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं होगा। सब विश्वामित्र मुनि से मिलने आए, उन दोनों के बीच में काफी विचार विमर्श हुआ। फिर आखिर विश्वामित्र मुनि की बात मान ली, और आजकल त्रिशंकु भी है अभी भी वहां। तो ऐसे विश्वामित्र मुनि जैसे जब भी क्रोध करते थे तो उनकी तपस्या क्षीण हो जाती थी, फिर से तपस्या करते थे, फिर कोई समस्या आती थी। ऐसे काफी विस्तार में शतानंद ने वर्णन किया। अंत में वो ऋषि महर्षि या ब्रह्म ऋषि बन तो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब तुम्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान हम करते हैं। परंतु संतुष्ट नहीं हुए विश्वामित्र मुनि, उन्होंने कहा जब तक वशिष्ठ मुनि मुझे नहीं मानते हैं ब्रह्म ऋषि, तब तक मैं नहीं स्वीकार करूंगा। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने भी स्वीकार किया, और उसके बाद वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। अपने पहले वाला जो भी वैर था या जो द्वेष था मन में, वो सब निकल गया। तो जैसे ही ये कथा सुनी विश्वामित्र मुनि की, फिर दशरथ महाराज आए। दशरथ महाराज के प्रतिनिधित्व करते हुए वशिष्ठ मुनि ने उनकी वंशावली सुनाई कि ऐसे प्रथा हुआ करती थी, जब क्षत्रिय समाज में लोग एक दूसरे से आते ऐसे विवाह का प्रस्ताव लेके अपने अपने वंशावली का वर्णन करते, शुरुआत से लेकर सूर्य वंश हो, चंद्र वंश हो, ब्रह्मा जी से शुरू करते। तो फिर जनक महाराज ने अपनी वंशावली का वर्णन भी करवाया, और फिर जनक महाराज ने घोषणा की कि यहां पे एक विशाल धनुष है, ये शिव जी का धनुष है। वास्तव में जब शिव जी एक बार त्रिपुरासुर का उन्होंने वध किया था तो इस धनुष का प्रयोग किया था, और उसके बाद ऐसे हुआ, एक घटना हुई थी इसमें विष्णु और शिव जी के बीच में कोई युद्ध हुआ था। भगवान विष्णु ने शिव जी के धनुष के तार को काट दिया था। इसी तरह इसीलिए शिव जी ने निराश होकर ये धनुष जो है देवरात राजा को दिया था। देवरात राजा के वंश में चलते चलते अब ये धनुष मेरे पास आया है और मेरी पुत्री है जिसका नाम मैंने रखा सीता। जब मैं एक यज्ञ संपन्न करने जा रहा था, हल चला रहा था यज्ञ भूमि को तैयार करने के लिए, तो अचानक मुझे उसी जमीन में एक छोटी सी बच्ची मिली जो कि बहुत सुंदर थी। तो मैं समझ गया कि भगवान की देन है, कोई साधारण बच्ची है नहीं। तो मैंने उसका नाम सीता रखा। अब सीता ये बहुत योग्य वधु है। तो मैंने ऐसे घोषणा की कि जो भी व्यक्ति मेरे कन्या से विवाह करना चाहता है उसे बहुत शूर वीर और काबिल होना चाहिए। तो अनेक राजकुमार आए अलग अलग प्रांतों से और उनके सामने एक शर्त रखा राजा जनक ने। कहा कि आपको ये धनुष उठाना है, तार बांध देना है और इसको मोड़ के तोड़ देना है। तो जितने भी सब शक्तिशाली राजकुमार आए, धनुष को तार लगाने की बात दूर है, तोड़ने की बात दूर है, उसको उठा भी नहीं पाए, निराश होकर चले गए। उस समय उनको लगा कि हमारा अपमान हुआ है, इसलिए इकट्ठे होके आक्रमण किया उन्होंने जनक राजा के ऊपर। तो जनक महाराज के सेना के विरुद्ध उनका युद्ध हुआ। काफी समय युद्ध चला, परंतु जब जनक महाराज देखा कि मेरी सेना काफी लंबी समय तक युद्ध करके अब थक गई है, कभी भी हम हार सकते हैं, तो उन्होंने देवताओं को निवेदन किया। देवताओं की सेना जब आई वहां पे, तो ये सारे राजकुमार जो थे वो भय के मारे भाग गए। तो फिर श्री राम की ओर देखा, क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने कहा था कि श्री राम यहां है, दशरथ महाराज के पुत्र, तो ये आपके धनुष को उठाने का प्रयास करेंगे। क्षमा कीजिए, दशरथ महाराज अभी तक आए नहीं थे वहां पे। तो जनक महाराज ने कहा कि ये तो एक बहुत तरुण लगते हैं, मनुष्य हैं, जब देवतागढ़ भी नहीं उठा पाए हैं तो ये कैसे उठा पाएंगे। फिर भी ठीक है, प्रयास करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो श्री राम ने प्रणाम किया सबको वहां पर आए धनुष के सामने और धनुष को बड़े आसानी से उठाया, जैसे बच्चा किसी फूल को उखाड़ देता है, और उतने ही आसानी से तार भी जोड़ दिया। और जैसे हाथी जब गन्ने को तोड़ देता है आसानी से, वैसे श्री राम ने उस धनुष को मोड़ के तोड़ दिया। तो ऐसी एक भयंकर ध्वनि वहां से निकली कि ऐसे प्रतीत हो रहा था कि शायद एक पहाड़ फूट गया हो। विश्वामित्र मुनि, जनक महाराज, राम और लक्ष्मण के अलावा सभी लोग, जो जितने भी लोग वहां उपस्थित थे, वो सब गिर पड़े जमीन पर। ये धनुष इतना बड़ा था कि वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि 500 लोग इसको खींच के ले आ रहे थे एक रथ के ऊपर। इतना विशाल था, इतना भारी था, लेकिन श्री रामचंद्र ने आसानी से उसको उठा दिया। अब श्री राम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। श्री राम के लिए क्या कोई समुद्र के ऊपर सेतु बांधना भी कोई बड़ी बात है? हमारे लिए बड़ी बात है। इसलिए हम भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं कि उन्होंने सेतु बांध दी समुद्र के ऊपर। जब वो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों को और हर एक ब्रह्मांड के भीतर अनंत कोटि ग्रहों को संभालते हैं, इतने सारे ब्रह्मांड और लोक और ग्रह तैर रहे हैं अंतरिक्ष में, तो कौन संभाल रहा है उनको? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे जब हम मुट्ठी में कोई मिट्टी पकड़ते हैं, तो जब तक मुट्ठी में हाथ मिट्टी रहती है तब तक मिट्टी रहती है, लेकिन ऐसे ऊपर फेंक दे तो मिट्टी का कोई आधार नहीं रहता, बिखर जाता है। तो ये सारे ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, जितने भी ग्रह भी हैं हर एक ब्रह्मांड के भीतर वो भगवान की मुट्ठी में है, इसलिए तो वह रहते हैं, अनंत शेष शक्ति प्रदान करते हैं, अपने फणों पर धारण करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, गाम आविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा, इन समस्त ग्रहों को मैं मेरी ओजस शक्ति के द्वारा मैं धारण करता हूं। तो जब भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण कर सकते हैं, उठा सकते हैं, तैरा सकते हैं, तो एक धनुष को उठाना या कोई सेतु को बांधना कोई बड़ी बात है भगवान के लिए? नहीं। परंतु भगवान नरलीला जो कर रहे हैं इसलिए बात बड़ी अद्भुत बन जाती है। तो जनक महाराज बहुत प्रसन्न हुए। अब शिव जी के धनुष तोड़ने के संबंध में एक चुटकुला हमें याद आ रहा है, जो हम सुनाएंगे, फिर कथा को विराम देंगे। ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर एक टीका है। आपको तो पता है कि आजकल शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसे हो गई है कि जो भी बच्चे पाठशालाओं से विश्वविद्यालयों से निकलते हैं वो नास्तिक हो जाते हैं, उनकी श्रद्धा शास्त्रों में खत्म हो जाती है। तो खैर, एक बार शिक्षा विभाग के एक परीक्षक इंस्पेक्टर गए थे किसी एक पाठशाला में, तो वो भाषण दे रहे थे सारे बच्चों को, अध्यापक गण भी वहां पर सब थे। तो अपने भाषण के दौरान उन्होंने रामायण की बोली कोई बात की, और भाषण के अंत में उन्होंने बच्चों से पूछा, आपने रामायण तो पढ़ा है ना? सब बच्चों ने हाँ 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 कह दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, तो आप बताओ कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? तो शांति सब जगह, किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर एक बच्चे ने हाथ ऊपर उठाया, घबराया सा लग रहा था। तो परीक्षक ने कहा उससे, घबराओ नहीं, बोलो शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? सर सर मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। तो परीक्षक बड़े हैरान हो गए, अरे अध्यापक की ओर देखे, जो अध्यापक बच्चों के साथ बैठे थे। जब अध्यापक की ओर देखा तो अध्यापक थोड़े घबरा गए, परीक्षक आए हैं सरकार की ओर से क्या कहे। तो फिर वो उठे, कहने लगे, सर सर मुझे पता है, इसने ही तोड़ा होगा, इसी ने तोड़ा हो, वो कह रहा नहीं तोड़ा मैं तो इसी ने तोड़ा होगा। तो और भी हैरान हो गए बेचारे परीक्षक। फिर अब प्राध्यापक की ओर देखे, प्रिंसिपल जो खड़े थे वहां, वो भी बड़े हड़बड़ा गए थे, अब क्या करें क्या करें। जब उनकी ओर देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सर सर कोई बात नहीं, स्कूल के बजट में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे आधुनिक शिक्षा की परिस्थिति है। तो खैर, ऐसे हुआ, श्री रामचंद्र ने धनुष को तो तोड़ दिया, उठा दिया। अब आगे चल के क्या हुआ, कैसे विवाह हुआ, किन का विवाह कैसे हुआ, और फिर आगे क्या लीलाएं हुई, यदि आप सुनना चाहते हैं तो आपको कल शाम 7 बजे यहाँ आना हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा, योर अटेंशन प्लीज, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। टुमारोज कथा विल बी ऑन द टेरेस ऑफ दिस बिल्डिंग, नॉट हियर। इफ यू कम हियर देयर विल बी सम मैरिज गोइंग ऑन, सो प्लीज कम। इट विल नॉट बी मैरिज ऑफ सीता।